अध्याय आग और राख, जब शरीर सवाल पूछे और आत्मा जवाब दे। कमरे की खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी, पर उसमें ठंडक नहीं थी, उसमें थी किसी दबी हुई ज्वाला की सरसराहट। रैना अब भी अखिल के पास बैठी थी, लेकिन उनकी नज़दीकी सिर्फ भावनात्मक नहीं रही थी, उसमें अब वो आवेग था जो सच और शक के बीच की खामोश दरारों को भरने आता है। अखिल की उंगलियां अब भी रैना की हथेलियों में थीं, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी कलाई तक खिसकने लगी, जैसे किसी रेखा को महसूस कर रहे हों या फिर किसी हद को पार करने की तैयारी हो। मैं सच में नहीं जानता इस वक्त क्या सही है। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां अब स्थिर नहीं थीं। रैना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थकावट नहीं थी बल्कि एक तरह की स्वीकृति थी, जैसे वो जानती हो कि अब शब्दों से ज्यादा देहों की भाषा बोलेगी। अखिल ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। नरमी अब भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तड़प थी जो अधूरेपन से उपजी थी। उसने रैना के बालों को पीछे सरकाया और उसकी गर्दन के पास अपने होठों को टिकाया, धीरे से नहीं, गहरे और खुरदुरे अंदाज में। रैना की सांसें तेज होने लगीं, पर उसने आंखें नहीं खोलीं। उसके होठ अब भी बंद थे, लेकिन उसकी पीठ एक पल को टेबल की धार की तरह तन गई। अखिल की उंगलियां उसकी पीठ पर उतर आईं, उस सफेद कुर्ते के पीछे का हर एहसास महसूस होता था। उसने कुर्ते के डोरी को खींचा, धीरे लेकिन इरादों से। कभी कभी, उसने फुसफुसाया, शक और चाह दोनों एक ही स्पर्श में घुल जाते हैं। रैना ने उसकी कॉलर कसकर खींच ली, जैसे जवाब ना देकर सिर्फ जज्ब कर लेना चाहती हो उस पागलपन को। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी, बिस्तर की चादरें जैसे उनके गवाह बन चुकी थीं, हर तह हर सिलवट अब इस सन्नाटे का हिस्सा बन गई थी। अखिल के होंठ अब उसके गालों से होते हुए उसके जबड़े तक उतर आए थे। वो उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाकर देख रहा था, जैसे कोई पढ़ रहा हो कोई अधूरी कविता। तुम क्या अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? रैना की सांसें अब बेहद पास से आ रही थीं। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकले, लेकिन उसकी आंखें जवाब थीं, गहरे, गीले और बेचैन। अखिल ने अब अपना शर्ट उतार फेंका, और जब रैना ने उसकी ओर देखा तो उसके सीने की धड़कनों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वो गहराई थी जो सिर्फ प्रेम में टूटकर ही आती है। रैना को उसने अपनी बाहों में भर लिया। अब कोई विरोध नहीं था, ना सवाल ना सफाई। कमरे की रोशनी जैसे मध्यम हो गई थी, या शायद उनके बीच की जंगली ऊर्जा ने उस रोशनी को निगल लिया था। बिस्तर पर जब रैना लेटी, उसकी पीठ जमीन की ओर थी और आंखें छत की ओर, तो उसके बाल एक खुली किताब की तरह फैले हुए थे। अखिल उसके ऊपर झुका, उसके होठ अब उसकी थकी गर्दन पर थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा कम और चाह ज्यादा थी। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता रहना, उसने पहली बार एक कमजोर स्वर में कहा। तो फिर ऐसे क्यों छूते हो, जैसे मुझसे लड़ रहे हो? रैना की आवाज टूटी नहीं थी, लेकिन उसमें एक थकान अब भी थी, जैसे कोई पत्थर बारिश झेलने के बाद भी गर्म हो, उसने कहा, और उसके होंठ अब रैना के पेट तक उबर चुके थे। वो हर जगह को जैसे फिर से जानना चाहता था, जैसे वो जगह फिर से अपनी करना चाहता हो। रैना की उंगलियां उसकी पीठ पर खरोंच छोड़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे हर दर्द का हिसाब लिया जा रहा हो। उसने अखिल को अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि अब उनके बीच सिर्फ सांसें थीं और एक आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। रात अपनी आधी उम्र तक पहुंच चुकी थी, और बिस्तर पर दो धड़कते जिस्म अब एक जंगली प्रेम की भाषा में बात कर रहे थे, कभी धीमे कभी तेज, कभी सिसकियों में कभी फुसफुसाहटों में। क्या अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते अखिल? रैना ने उसके कान में कहा, उस लम्हे में जब दोनों की देहें गीली हो चुकी थीं और रूहें पिघल रही थीं। अखिल ने उसकी नजरों में देखा, अब वहां सिर्फ एक सच्चाई थी, ना झूठ ना शक, सिर्फ थकावट के बाद की वो स्वीकृति जो आत्मा को चुप कर देती है। मुझे सिर्फ तुम पर नहीं आना, अब खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। वो दोनों एक दूसरे में समा गए, देह अब शब्द नहीं कह रही थी, वो जवाब बन गई थी। कमरे की खामोशी अब सुकून जैसी थी, या शायद वो खामोशी नहीं, दो टूटे हुए दिलों की एक अस्थायी शांति थी। लेकिन ये रात हमेशा के लिए नहीं थी। सुबह उन्हें फिर उसी दुनिया में जाना था जहां शक, फुटेज और सवाल अब भी जिंदा थे। लेकिन कम से कम उस एक रात में झूठ की सलीब और सच का साया दोनों एक दूसरे के पहलू में लेटे हुए थे।